मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। आज 11 मई 2017 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं परमजीत मिश्रा, आप लुधियाना पंजाब से हैं, फिर परमजीत आप कैथल हरियाणा से हैं, सुरभि सिंह आप रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं और शिवानी सिंह आप भी रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। तो परमजीत मिश्रा, परमजीत, सुरभि सिंह और शिवानी सिंह, आप चारों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, देखिए कि कभी कभी कितने अद्भुत संयोग जुड़ते हैं। आज अगर हम चारों नौजवान साथियों के नाम को दो वर्गों में बांट दें तो एक बड़ा खूबसूरत संयोग हमें दिखाई दे रहा है। शुरू के जो हमारे दो मित्र हैं, दोनों के नाम परमजीत ही हैं। अब फर्क इतना ही है कि एक मिश्रा हैं, दूसरे के सरनेम हम नहीं मालूम, एक पंजाब से हैं, दूसरे हरियाणा से हैं, लेकिन परमजीत ही हैं और एक ही दिन उनके नाम अनाउंस किए जा रहे हैं। दूसरे आप ग्रुप को देखेंगे तो उसमें सुरभि सिंह हैं और शिवानी सिंह हैं। नाम अलग अलग हैं, सरनेम दोनों के एक हैं, स्थान दोनों के एक हैं और हो सकता है कि दोनों आपस में बहने हों, संबंधी हों, मुझे नहीं मालूम है, उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन दोनों के नाम की शुरुआत एस से हो रही है, सुरभि और शिवानी। एक संयोग होते हैं और इस तरह के संयोग किस तरह से घटित हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, वी डोंट नो, लेकिन प्रकृति इस तरह के संयोग पैदा कर देती है। तो आप सभी चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के न्यूज एनालिसिस में मेरे पास बात करने के लिए न केवल बहुत सी खबरें ही हैं बल्कि बहुत से टॉपिक भी हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि मुझे अफसोस है कि मैं उन सभी टॉपिक पर आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, उसे मैं अंत में लेकर के आता हूं। पहले मैं कुछ टॉपिक्स पर बात कर लेता हूं ताकि निश्चिंत मस्तिष्क के साथ मैं पूरे समय का इस्तेमाल फिर सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक पर लगा सकूं। मित्रों, एक खबर आपने सुनी कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो श्रीलंका के दौरे पर आज जा रहे हैं, वहां वैसाख समारोह है, वो 14वें अंतर्राष्ट्रीय वैसाख समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वैसाख समारोह वो मनाते हैं श्रीलंका। चूंकि मैं गया हुआ, वहां श्रीलंका का बहुत विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, हम लोग देख करके आए थे। और श्रीलंका का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो बौद्ध धर्मी वर्ग है और आपको मालूम होगा कि सम्राट अशोक ने जो सांची का स्तूप है वहां से ही अपने बेटे और बेटी को विदेशों में बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए भेजा था। आज भी श्रीलंकन बहुत ही श्रद्धा के साथ सम्राट अशोक के पुत्र एवं पुत्री को याद करते हैं और बौद्ध धर्म के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है। मतलब आश्चर्य होता है कि वो गौतम बुद्ध जो भारत में हुए, आप देखिए कि भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत कम है, यहां से तो लगभग बुद्ध धर्म एक तरीके से एबॉलिश जैसा ही हो गया था। फिर बाद में जब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इस पर फिर थोड़ी सी चर्चा होनी शुरू हुई। मतलब चर्चा एक दार्शनिक रूप में तो होती थी, धर्म के रूप में अनुयायी बहुत कम रह गए थे, लेकिन विदेशों में बहुत हैं। तो दोस्तों, ये एक खबर है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री गए हैं, श्रीलंका के दो दिन के दौरे पर गए हैं, अवसर समारोह का है, लेकिन ये सिर्फ समारोह नहीं रह जाता है ना, दोनों देशों के संबंधों में कुछ न कुछ ताजगी आएगी, कुछ न कुछ नयापन आएगा, तो इस पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से श्रीलंका हमारा चूंकि पड़ोसी राष्ट्र है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्र, इसी को लेकर के कर्टेन रेजर के रूप में, यानी कि हमारे पिछले संबंध किस तरीके रहे हैं, आगे किस तरह की चुनौतियां हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, वह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका की बात करते समय मैं दो थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये आपको किताबों में नहीं मिलती है लेकिन क्लैरिटी की दृष्टि से आपको मालूम होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी की दृष्टि से भी, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स होने जा रहे हैं। आपने अगर डीडी न्यूज देखा हो, डीडी न्यूज में जो स्टेटमेंट दे रहे थे भारत और श्रीलंका में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की यात्रा के बारे में, तो देने वाले जो व्यक्ति थे उनका पद नाम था ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव डैश करके हिंद महासागर, ये उनका पद नाम था। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सचिव तो टॉप मोस्ट पर होते हैं, जैसे अभी डिफेंस सेक्रेटरी, कल आपने डीडी न्यूज में यह भी सुना कि डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया, 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं वो मिस्टर मित्रा, वो डिफेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो सेक्रेटरी जो है वो मंत्रालय का प्रमुख होता है, अगर हम अलग रूप में बात करें तो वो मंत्री का चीफ एडवाइजर है और सर्वोच्च स्थायी कार्यपालक है वो, सर्वोच्च, राइट। अब जैसे अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में देखिए तीन है, स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और इन सब के चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी होते हैं, आपके नेवी चीफ होते हैं, एयर मार्शल होते हैं, ये सब के सब अपने अपने विंग के हेड हैं। लेकिन जो सेक्रेटरी होता है ये तीनों का हेड, बल्कि वो जो कोस्टल गार्ड ये सब होते हैं उन सब का भी हेड होता है। डिफेंस का एज ए एग्जीक्यूटिव हेड, स्थायी कार्यपालिका के रूप में वो सेक्रेटरी होता है, जो किसी भी आईएएस ऑफिसर के कैरियर का क्लाइमेक्स होता है, टॉप होता है। हालांकि ठीक है कैबिनेट सेक्रेटरी से भी ऊपर, मतलब टॉप मोस्ट वो माना जाता है, लेकिन एक सामान्य तौर पर। ठीक इसके नीचे देखिए, वैसे आप एडिशनल सेक्रेटरी भी देखेंगे, आपको स्पेशल सेक्रेटरी भी देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा पीरियड होता है, लेकिन जो मेन फिर आते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरीज आते हैं। तो सेक्रेटरी तो पूरे के पूरे मंत्रालय का हेड होता है, और ज्वाइंट सेक्रेटरीज को उस मंत्रालय का एक विभाग सा सौंप दिया जाता है कि आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, यानी कि एक मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी तो एक ही होगा लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी कई होते हैं, और ये अपने अपने विभागों को देखते हुए सेक्रेटरीज को इन्फॉर्म करते हैं, यानी कि सेक्रेटरी के निर्देशन पर काम करते हैं। ये हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। तो जब ज्वाइंट सेक्रेटरी कोई बात कहते हैं तो आप मान करके चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीलंका जा रहे हैं, वो हिंद महासागर में स्थित है, तो आप देखिए कि उसमें जो अब इस पूरे के पूरे इनके दौरे को जो देखने की जिम्मेदारी है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हिंद महासागर को है। तो विदेश मंत्रालय में भी इस तरह से क्षेत्र बांटे हुए हैं कि कौन ज्वाइंट सेक्रेटरी किस क्षेत्र के मामलों को देखेगा, और इन सबके टॉप पर हमारे विदेश सचिव हैं, है ना, जो सभी ज्वाइंट सेक्रेटरीज को देखते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, मुझे लगा कि ये मुझे आपको बताना चाहिए क्योंकि इस तरह की जानकारियां आप लोगों को अखबारों में या दूसरी चीजों में शायद ना मिले। मित्र, जो दूसरी खबर थी वो देखा आपने कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी हमारे जो कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जो रोक रखा है, अभी उनकी फांसी सजा पर रोक लगा दी है। ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत लगातार कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के साथ कि आप हमें उन्हें मिलने दें, उनके ऊपर जो आपने आरोप लगाए हैं हमें उसके कागजात दे दें, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो इस समय भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फांसी की सजा दिए जाने पर रोक लगा दी। देखिए अस्थायी, केवल एक स्टे है, रोक लगाई गई है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है ना। अब देखें पाकिस्तान क्या स्टेप लेता है, लेकिन कम से कम एक तो भारत की जीत कही ही जा सकती है कि अब वो फांसी पर तो नहीं चढ़ाएंगे। यहां आपको एक बात और बता दूं, अगर कल आपने डीडी न्यूज देखी हो तो उसमें हमारे मीरा शंकर आई थी, जो हमारी पूर्व राजदूत रही हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मान लीजिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया और ये कहा कि नहीं, आप कुलभूषण जाधव को छोड़िए, रिहा कीजिए, तो क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यह बात मानने को बाध्य है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, पाकिस्तान उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात को मानने को बाध्य नहीं है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास अपना कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है कि वह बाध्य कर सके। तो कैसे बाध्यता होगी? उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो मामला है ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो सुरक्षा परिषद, उसमें यह मामला जाएगा। आपको मालूम है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 के पास वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, रशिया, ये 5 देशों के पास वीटो पावर है। यदि ये 5 स्वीकार कर लें और फिर इस 10 में से बहुमत से पारित हो जाएगा तब तो पाकिस्तान मानने के लिए बाध्य होगा, वो भी अगर वो सिक्योरिटी को मतलब यूएनओ खुद ध्यान देता है तो, अदरवाइज फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकती। तो ये जो तथ्य है, ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, एक और खबर थी जो एनजीओ को लेकर के थी कि भारत सरकार ने 6,000 एनजीओ से कहा है कि वो अपने अकाउंट कोर बैंकिंग सिस्टम वाले में खोलें, यानी कि सरकारी बैंकों में अपने खाते खोलें, क्योंकि विदेशों से इनको धन मिलता है उसकी ठीक से उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए। और आपने इससे पहले ये सब भी पढ़ा ही होगा कि किस तरह से जब विदेशों से धन मिलता है तो उसका गलत उपयोग भी होता है, लॉबिंग भी होती है। तो इन सब पर कंट्रोल करने के लिए और सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी उसको भी ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजंस किए गए हैं। और एनजीओ आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अगर अपना मेंस का सिलेबस उठा करके देखें सेकंड पेपर का, तो उसमें बकायदे एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, प्रेशर ग्रुप्स अलग से मेंशन किया हुआ है। तो एनजीओ के बारे में सरकार जब कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लेकर के आती है, डिस्प्यूट डिबेट जब खड़े होते हैं, तो बिल्कुल आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करने शुरू कर देने चाहिए। मित्रों, एक खबर तो नहीं थी लेकिन मैं बाद में कहीं मिस न कर जाऊं, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो सोलर एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, उसके रेट लगातार ड्रेस्टिकली कम होते चले जा रहे हैं। मतलब थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की तुलना में जो सोलर एनर्जी है वो सस्ती होती जा रही है। तो देखिए, सामान्य तौर पर तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि अक्षय स्रोत है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अगर सोलर एनर्जी हमारे लिए इतनी अवेलेबल हो जाती है तो हम कोयले से जो पोल्यूशन हो रहा है वो नहीं, वो होना बंद हो जाएगा, एनर्जी भी सस्ती मिलने लगेगी, एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसको लेकर के कुछ लोग चिंतित भी हैं, तो वो किस तरीके से चिंतित हैं अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट इकोनॉमिक टाइम्स का है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो चिंता है ये अर्थशास्त्र की चिंता, पर्यावरण की चिंता नहीं है, यानी अर्थशास्त्र की चिंता है कि जो पुराने थर्मल पावर स्टेशन हैं उनका क्या होगा, किस तरह से होगा, है ना, उसको लेकर के चिंता व्यक्त की गई है, तो वो आप लोग देख लेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर के, और वक्त बहुत कम बचा है तो शायद हम लोग पूरी तरह से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन और किसी दिन फिर उसको रखा जा सकता है। आपने ध्यान दिया है मित्रों न्यूज में ही, जो पहली न्यूज थी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो उद्घाटन किया है वो है इंटीग्रेटेड कोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत न्यायालय कोर्ट मैनेजमेंट प्रबंधन सूचना प्रणाली, एकीकृत न्यायालय प्रबंधन सूचना प्रणाली, आप इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। मैं ये ट्रांसलेशन अपनी तरफ से कर रहा हूं, माफी चाहूंगा क्योंकि इसका हिंदी अभी मुझे पढ़ने को नहीं मिला है। इंग्लिश में आपको ये नाम याद हो जाना चाहिए, वो है ICMIS, ICMIS। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं। इस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है और हमारे चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि 8-9 महीने में, आने वाले 8-9 महीने में हम अपने कोर्ट को, जो भी हायर कोर्ट्स हैं, इनको पूरी तरीके से पेपरलेस कर देंगे, यानी कि कागज का काम खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब इस प्रणाली से क्या होगा कि अगर कोई अपनी याचिका दायर कर रहा है, मान लीजिए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहा है, तो पहले क्या होता था कि उसको सारे पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स ये वो फोटोकॉपी करा करके और वो सुप्रीम कोर्ट को पेश करना होता था, ताकि सुप्रीम कोर्ट उनका अध्ययन करने के बाद फिर उनकी जो याचिका है उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, जो कुछ भी है। अब ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी याचिका दायर कर देगा, अपने जो याचिका, जो कोर्ट का जजमेंट है उसका नंबर उसमें मेंशन कर देगा, उच्च न्यायालय उसको अपने वेबसाइट पर जाकर के और उस नंबर की पूरी फाइल देख लेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उच्चतम न्यायालय को चाहिए वो उसे स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगी। सोचिए कि कितनी बड़ी क्रांति है। और आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण में देखा भी कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से पेपर बचाने के बाद पानी की कितनी बचत होती है, और ये तथ्य तो आप सबको मालूम ही है कि जो कागज है वो किससे बनता है, पेड़ों के काटने से कागज बनता है, तो पर्यावरण की कितनी रक्षा हो सकेगी। और प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी का कितनी बड़ी हम सेवा करेंगे। तो एनवायरमेंट से भी संबंधित है। और अब आप देखें कि मित्रों, मैंने तो कम से कम पहली बार ही सुना कि जो ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं, ई गवर्नेंस, उस ई गवर्नेंस के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ और शब्द दिए हैं। मैं चाहूंगा कि ये शब्द आपको भी मालूम होने चाहिए, नोट कर लें, ताकि अगर ई गवर्नेंस पर कोई प्रश्न पूछा जाता है या निबंध लिखने को कहा जाता है तो आप इसको थोड़ा इस रूप में भी डिफाइन करने की कोशिश करें। ई गवर्नेंस का एक सीधा सा मतलब है जो अभी तक चलता आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि पेपरलेस और सारी चीजें कंप्यूटर पर अवेलेबल है, वो क्विक भी होगा, ट्रांसपेरेंट भी होगा, बहुत बड़ा उसका कमाल है टेक्नोलॉजी का। ट्रांसपेरेंसी जितनी भी आ रही है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है, ऑक्शंस वगैरह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्शंस पर आधारित अब सारे के सारे ठेके दिए जाने लगे हैं। कल डीडी न्यूज पर दिखा भी रहा था कि कैसे ट्रांसपेरेंट कोयला आवंटन मामले में कैसे ट्रांसपेरेंसी आई है, तो उसे तो हम जानते ही हैं। लेकिन कल इन्होंने कुछ और शब्द इस्तेमाल किए, जैसे ई के लिए उन्होंने एक रखा इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस ई को उन्होंने इफेक्टिवनेस से जोड़ा। इसके बाद उन्होंने ई गवर्नेंस को एनवायरमेंट से भी जोड़ा, एनवायरमेंट गवर्नेंस मतलब वो एनवायरमेंट की भी वो रक्षा करेगी। उन्होंने इकोनॉमी से भी जोड़ा कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगी, ज्यादा सुदृढ़ करेगी। आप देखिए कि आप कोई भी सूचना कहीं से कहीं एक सेकंड में भेज दीजिए तो आर्थिक गतिविधियों में भी ये तेजी लाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि उन्होंने ई गवर्नेंस को एक्सपेंड कर दिया है और ये एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, मैं खासकर आपसे बात जो करना चाह रहा था उच्चतम न्यायालय के बारे में। अभी जस्टिस कर्णन का मामला आपको मालूम है कि जस्टिस कर्णन के पूरी बैकग्राउंड जो पीछे से घटना घटती आ रही है उनके बारे में आप जानते हैं, और अंत में सुप्रीम कोर्ट को यह स्टेप लेना पड़ा कि उन्हें 6 महीने की जेल की सजा दी गई है। इस पर मैं कुछ बात करना चाह रहा था, फिर किसी जस्टिस को कैसे हटाया जा सकता है, वो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया में, इसके बारे में थोड़ी बातें करना चाह रहा था, लेकिन अब वक्त नहीं है, हम इस पर कभी बातें करेंगे। एक दो बातें मैं आपको और बता दूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आज से 3 तलाक पर सुनवाई शुरू कर दी है। इस पर आपकी नजर होनी चाहिए, मतलब नजर इस रूप में नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुन रहा है, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, इसके पक्ष में भी तर्क होंगे, विपक्ष में भी तर्क होंगे, उन तर्कों को आप नोट करते जाइए अलग से कि ये पक्ष में है 3 तलाक के और ये 3 तलाक के अगेंस्ट है। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को प्रेज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी छुट्टियां कम कर दी हैं, हाई कोर्ट की भी कम की गई हैं और वहां अतिरिक्त सुनवाई हो रही। तो अब आप देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी परकोलेट कर रही है। यहां से हम एक और चीज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरनल रिफॉर्मेशन की एक प्रोसेस शुरू हो गई है, एक आंतरिक सुधार की जो प्रक्रिया होनी चाहिए किसी भी संगठन में, उसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है। तो मित्रों, आज के अपने इस न्यूज एनालिसिस को मैं यहीं तक सीमित रखना चाहूंगा, क्योंकि महाभियोग की चर्चा करने के लिए अब वक्त नहीं रह गया है, लेकिन इस पर हम फिर से कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तो मित्रों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज मैं आपको काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज आप अपने अपने जरूरत के हिसाब से उसे देख लीजिएगा। खासकर सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर के आज क्लिपिंग्स की संख्या काफी है, तो उसमें आपको काफी पॉइंट इससे मिल जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला होता है, जुडिशियरी का मामला होता है, ये मान करके चलिए कि मेंस में एक न एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाता ही है। मित्रों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: अमित कुमार सैदपुर उत्तर प्रदेश से, पूनम सागर पटना बिहार से, अवनीश साहू, मुकमुद्दीन अंसारी नोएडा उत्तर प्रदेश से, रितंभरा आर्य पटना बिहार से, ऋषि देव, वीरेंद्र सैनी अमरोहा बस्ती यूपी से, उमा उपाध्याय, कुमार प्रत्यूष, अली शेख मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, रमन, रीना, रोहित सिंह उन्नाव उत्तर प्रदेश से, कविता चौरसिया बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, नफीस अहमद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, नीतीश राज सीतामढ़ी बिहार से, और भोज राज गुर्जर जयपुर राजस्थान से। तो आप सबका भी मित्रों बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।